ओम शांति, ओम शांति। आज की इस रूहानी शाम में हमारे बीच में आदरणीय रामलोचन भाई जी उपस्थित हैं। हम जोरदार तालियों से करतल ध्वनि के साथ भाई साहब का अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। शांति का गुण जिनके व्यवहार से दिखता है, ऐसे विनम्र स्वभाव के धनी, नम्रचित, मितभाषी, मधुर मुस्कान लिए हुए, चेहरे पर योग की आभा जिनके दिखती है, ऐसे विनम्रता की मूर्ति आदरणीय रामलोचन भाई जी, जो भी एक तपस्वी रत्न है, और आज हमें बाबा के पास उड़ने के लिए हल्कापन कैसे रहे, जितनी आत्मा हल्की होंगी उतना हम योग में और अनुभव में उड़ेंगे। तो बहुत सुंदर विषय डबल लाइट स्थिति, इस विषय का स्पष्टीकरण लेकर भाई साहब हमारे बीच में हैं, आदरणीय रामलोचन भाई जी।
ओम शांति। आप सभी बाबा के बेफिकर बादशाह बच्चे हैं। कहते भी हैं जब भगवान मिल गया तो फिर किस बात की चिंता। अगर चिंता है तो अभी तक आपने भगवान को ज्ञान के आधार से जाना है और समझा है, लेकिन भगवान के साथ का अनुभव बहुत कम किया है। अगर भगवान के साथ का अनुभव आत्मा करती रहे तो चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान से बड़ा और भगवान से ज्यादा शक्तिशाली और भगवान से ज्यादा कल्याणकारी कोई नहीं है, और वो भगवान आपका है। तो भगवान तो आपका बना, लेकिन क्या आपने भगवान को अपना बना लिया, या सिर्फ ज्ञान से समझा है कि मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है और उसके बरसे के अधिकारी है, सिर्फ ज्ञान से समझा है, या प्रैक्टिकल आत्मा उस स्वरूप में स्थित रहती है, ये स्वयं से चेक करना। अगर भगवान के साथ का अनुभव होता रहे तो डबल लाइट तो स्वतः बन जाएंगे, लेकिन इसमें नंबर वार है। डबल लाइट का अर्थ ही है दो, एक तो डबल लाइट अर्थात मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ और ये शरीर लाइट का कार्य है। इस लाइट के कार्य में मैं आत्मा लाइट स्वरूप विराजमान हूँ। जैसे सूर्य है, सूर्य स्वयं प्रकाश का गोला है, लेकिन उस प्रकाश के गोले से चारों तरफ प्रकाश की किरणें फैल रही है, ऐसे आत्मा प्रकाश स्वरूप है और ये शरीर प्रकाशमय काया में है। तो आत्मा प्रकाशमय काया के बीच में प्रकाश स्वरूप है, एक डबल लाइट का स्वरूप ये है। दूसरा है डबल लाइट अर्थात किसी प्रकार का मन बुद्धि पर बोझ नहीं, ना तन का, ना मन का, ना धन का, ना जन का, ना पुराने संस्कार का। ये पांचों प्रकार के बोझ से फ्री, उसको कहा जाएगा डबल लाइट। अब इस प्रकार की डबल लाइट की स्थिति लाने के लिए चार बातों पर अटेंशन देना है। अगर वो चार बातें प्रैक्टिकल में आत्मा स्वरूप में ले आए तो सदा डबल लाइट रह सकती है। वो चार बातें हैं, पहली बात है सदा अशरीरी होने के अब अभ्यास में रहना, दूसरी बात है एक आस, एक बल, एक भरोसे में सदा स्वयं को रखना। एक आस, एक बल और एक के भरोसे में सदा रखना। तीसरी बात है मनसा वाचा कर्मणा श्रीमत प्रमाण चलना। मनसा वाचा कर्मणा श्रीमत प्रमाण चलाना। चौथा है सदा ड्रामा की ढाल पर एक्यूरेट खड़े रहना, ड्रामा की ढाल पर खड़े रहना अर्थात बिंदी लगाना। तो ये चार बातें अगर प्रैक्टिकल में है तो आप इस संसार सागर में जहां सदा लहरें उठती रहती हैं, कुछ न कुछ समस्याएं, चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की या जन की प्रकृति की कुछ न कुछ समस्या आती रहती है, पुराने संस्कार की, इन सब से आप मुक्त हो जाएंगे। अगर ये चारों पर अटेंशन रहे तो, नहीं तो समस्याएं तो आनी ही हैं और बढ़नी हैं। जितना आपका पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा उतनी समस्या बढ़ती जाएगी। आपका पुरुषार्थ तेज होने के कारण समस्या बड़ी हो रही है लेकिन छोटी फील होगी, क्योंकि आपकी स्थिति महान है तो छोटी फील होगी, लेकिन आएगी जरूर बड़ी होकर। जिसको बाबा कहता है कि माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, तो चार बातों में पहली बात है आत्मक स्थिति का अभ्यास। अभी अव्यक्त बाबा की जो मुरली सुनी उसमें भी बाबा ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि आत्मक स्थिति का अभ्यास करते रहो, इतना अभ्यास बढ़ा लो कि मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग है, अलग की अनुभूति हो, इतना अभ्यास बढ़ाना है। इसके लिए आत्मा की जो चार स्थितियां हैं भिन्न भिन्न समय पर, उन चार स्थितियों को आप प्रयोग में लाओ। सिर्फ मैं आत्मा हूँ ये अभ्यास करने से स्वरूप में नहीं आ सकेंगे। क्यों? क्योंकि आप कर्म क्षेत्र पर हैं, आपको कर्म भी करना है, इसलिए आत्मा की जो चार स्थितियां अलग अलग समय के लिए हैं वो आप प्रयोग करो। पहला है आत्म अभिमानी, दूसरा है देही अभिमानी, तीसरा है विदेही और चौथा है अशरीरी। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी, ये चार शब्द आप बाबा के मुरली में सुनते होंगे। चारों में कुछ अंतर है या एक ही है? क्या समझते हैं पांडव, अंतर है या एक ही है? शक्तियां क्या समझते हैं, चारों एक ही है या अलग अलग है? देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी। अच्छा, चारों को क्लियर करते हैं। कब किस स्थिति में अभ्यास करना है? पहला है देही अभिमानी, अर्थात आत्मा जब कर्म कर रही है तो इस देह का आधार लेकर कर्म कर रही है। तो कर्म करते समय ये संकल्प और स्थिति रहे कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ। कर्म करते समय ये स्थिति का अभ्यास करो। कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म कर रही हूँ। ये अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते जाओ और जब आपकी ये स्थिति संपूर्ण रूप से अभ्यास में आ जाएगी तब आपकी स्थिति बन जाएगी कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ नहीं, इन इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चला रही हूँ, ये स्थिति आ जाएगी। पहला है इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ। अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इसके मालिक बन जाएंगे और मैं आत्मा इन इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चला रही हूँ। जैसे मान लो आप पानी पीने जा रहे हैं तो पहला अभ्यास है मैं आत्मा इन मुख के द्वारा पानी पी रही हूँ या शरीर को पिला रही हूँ। लेकिन जब आपकी ये स्थिति परफेक्ट हो जाएगी तब क्या स्थिति आएगी? आत्मा हाथ को ऑर्डर देगी, हे हाथ इनको पानी पिलाओ। ये बहुत हाईएस्ट स्थिति है। शुरू की स्थिति है जिसका यादगार है कमल का फूल। कमल का फूल सब जानते हैं, कीचड़े में रहता भी है परिवार के साथ, कुछ डूबा रहता है कुछ ऊपर हो जाता है, तो उसकी निशानी है कमल का फूल। और जो परफेक्ट बन जाते हैं उसकी निशानी है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल की तीन विशेषता है, वो और किसी फूल में नहीं है। कौन सी तीन विशेषता है जो और किसी फूल में नहीं है? खुशबू सब फूल देता है, कांटों के बीच में सब फूल रहता है, ये तो कॉमन बात है। लेकिन जो गुलाब के फूल की विशेषता है वो और किसी फूल में नहीं है। अच्छा, पहली विशेषता है, आपके देखा होगा जब गुलाब का फूल पूरा खिल जाता है तो जरा सा ऐसे हाथ करो तो सारी पंखड़ियां झड़ जाती है। और किसी फूल की पंखड़ी झड़ती नहीं है, सूख जाती है, बाकी झड़ती नहीं है। लेकिन गुलाब के फूल की पत्तियां झड़ जाती है। अर्थात जो आत्मा एकदम एवर रेडी है, ऐसी आत्मा शरीर में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए, इस सब से न्यारी, कर्म किया, कर्म पूरा हुआ, फिर अपने घर में अपने बाप के पास विश्रामी हुई। दूसरी विशेषता है कि कमल के फूल में, ने गुलाब के फूल में कभी कीड़ा नहीं बैठता है, कोई भी कीड़ा गुलाब के फूल पर नहीं बैठता है। आज तक सुना कभी कि गुलाब के फूल की भी शहद बनती है, मधुमक्खियां भी नहीं बैठती। अर्थात जो एवर रेडी आत्मा है वो सबके साथ रहते हुए इतनी न्यारी है कि ना कोई मेरा ना मैं किसी की, सब मेरे हैं, मैं सबके हूं, इतना न्यारा होगा। तीसरी विशेषता होती है कमल के फूल की, जब सब पंखड़ियां झड़ जाती हैं तो बीच में बूर बचता है, जिसका बाद में कमल का फल बनता है, बूर बचता है। तो जो एवर रेडी आत्मा है वो सदा इस देह में रहते हुए देह भान से मुक्त, बूर अर्थात सदा आत्मक स्वरूप में स्थित रहेगी। ये है आत्मा की अंतिम स्थिति। लेकिन अभ्यास कमल के फूल से करना है। कमल का फूल परिवार में रहते हैं, समस्या आती है हटाते हैं, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। जैसे बाबा कहता है हलवा बनाओ, सब्जी बनाओ, तो जब बनाते हो तो कढ़ाई में, बर्तन में चिपकता है और आप छुड़ाते हो, चिपकता है छुड़ाते हो, और जब पक गया तब अपने आप बर्तन को छोड़ देता है, ऐसे पलटो तुरंत पलट जाएगा। ऐसे एवर रेडी आत्मा लास्ट में इतना इस शरीर से अलग हो जाती है शरीर में, लेकिन इतनी न्यारी है कि सेकंड में इसको छोड़ के अपने घर चली जाएगी। तो एक ने कहा, ऐसे क्लास करा रहे थे, कि आजकल तो ऐसे बर्तन निकले हैं जिसमें खाना चिपकता ही नहीं है। पता नहीं कौन सा बर्तन क्या कहते हो, चिपकता ही नहीं है उसमें खाना। तो इसका बहुत सुंदर बाबा ने जवाब दिया था, ये एग्जाम्पल शुरू का था, अभी तो इतना ज्ञान स्पष्ट हो गया, अभी तो इतने एग्जाम्पल आपके सामने तैयार हैं, तो अब तो आपको कहीं चिपकना ही नहीं चाहिए। अगर अब भी चिपकते हैं तो माना आप वर्तमान समय के अनुसार नहीं चल रहे हैं, पीछे से चल रहे हैं। सोचो आजकल लाइट जल रही है और कोई लाइट न जला के एक छोटा सा दीपक जला के बैठे तो उसको आप क्या कहेंगे? दीपक पुराने जमाने का है, आजकल तो लाइट है ना। तो जैसा समय है, समय अंत का पहुंचा है, अब अभ्यास हमें सदा न्यारे रहने का करना है। तो पहली बात है आत्मा का अभ्यास इस विधि से बढ़ाओ, देही अभिमानी स्थिति। दूसरा है आत्म अभिमानी स्थिति। जब आप योग में बैठते हो उस समय आत्मा को, शरीर को याद करने की जरूरत नहीं है, कोई कर्म इंद्रियों की जरूरत नहीं है, इन सब को भूलो और अपने को आत्मा समझकर मीठे बाबा को याद करो। आत्म अभिमानी अर्थात योग में सब कुछ भूल, आत्मक स्वरूप में टिक कर मीठे बाबा को याद करो। देही अभिमानी में देह का आधार है, आत्म अभिमानी में देह को बिल्कुल भूलना है। तीसरा है विदेही। विदेही अर्थात जब आप बैठे हैं, कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो किसी न किसी सोमान में स्वयं को स्थित रखो, सोमान में स्थित रखो। सोमान देह भान को मिटा देगा, सोमान आपके दृष्टि वृत्ति कृति सब को चेंज कर देगा। अगर आपको मान लो एक सिंपल सोमान स्मृति में है, मैं ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हूं, बीके तो रोज कहते रहते हैं, लेकिन इसी सोमान में स्थित रहो तो आपकी दृष्टि वृत्ति सब बदल जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा कुमार अर्थात ब्रह्मा कुमारी माना पुरानी दुनिया से मर गए, आपका संसार ही बदल गया, आपका माँ बाप भाई बहन बंधु सब बाप दादा है। अगर आप घर में रहते हुए लौकिक बच्ची को लौकिक बच्ची की दृष्टि से देखते हो, ये मेरी बेटी है, तो क्या उस समय आप ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार हैं? हैं उस समय? क्या ब्रह्मा कुमारी को बेटी होती है? ब्रह्मा कुमार को बेटी होती है? सोचो, अगर अभी तक हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ही नहीं बने हैं, तो फरिश्ता और देवता तो बड़ी दूर की बात है। अभी अपने मन के भावों को चेंज करो। बेटी है, जानते हो, बेटी कहकर बुलाना भी है, लेकिन अंदर की स्थिति रहे। या तो ये भी ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमारी मेरी बहन है, या ये भी आत्मा शिव बाबा की संतान मुझ आत्मा का भाई है। अंदर ये रहे, ऊपर से तो जो रिलेशन है वो बोलना है, फिर आपकी चढ़ती कला होने लगेगी। जब तक आप घर में लौकिक को अलौकिक नहीं बनाया है, घर में अलौकिक स्थिति नहीं लाई है, तब तक आपकी चढ़ती कला नहीं होगी। योग लगाने बैठोगे, योग लगेगा नहीं। मुरली सुनने बैठोगे, घर की बात याद आती रहेगी। कारण यही है, अभी अलौकिकता नहीं लाए हो। तो यहाँ बाबा के घर से ये पक्का करके जाना कि अभी हमें परिवार में अलौकिकता लानी है, अपनी दृष्टि वृत्ति को संकल्प को परिवार में चेंज करना है। अगर बेटी को बेटी समझते हैं तो क्या होगा? अगर उसने थोड़ी भी गलती की, बेटी या कोई भी रिश्ता, तो आपको गुस्सा आ जाएगा। अब बताओ, अगर गुस्सा आ गया तो अभी बाबा ने मुरली चलाई है कि गुस्सा आना क्या राइट है? अगर अभी तक गुस्सा आ रहा है तो संपूर्ण कब बनोगे? और कई तो गुस्सा आ जाता है तो थप्पड़ भी मार देते। लेकिन अगर आपने एक थप्पड़ मारा, चाहे छोटा ही बच्चा था, लक्ष्य आपका सुधार का है, लेकिन एक थप्पड़ मारने का रिजल्ट क्या हुआ? 3 नुकसान किया आपने। एक तो एक थप्पड़ मारा तो आपको भी थप्पड़ खाना पड़ेगा, ये निश्चित है, कर्म का फल अटूट है। दूसरी बात, आपने थप्पड़ मारा और बच्चे को सिखा दिया थप्पड़ कैसे मारा जाता है, बच्चे को बिगाड़ दिया, क्रोध करना सिखा दिया। उस छोटे से बच्चे को क्या पता थप्पड़ मारना क्या होता है। तीसरी बात, अगर आपने थप्पड़ मारा तो श्रीमत की अवज्ञा की, इस अवज्ञा का आपको दंड मिलेगा। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि लौकिक दृष्टि से देखा इसलिए। अगर आप अलौकिक दृष्टि से देखते, नहीं ये ब्रह्मा कुमारी है, तो आपका हाथ नहीं उठता, आप उस पर गुस्सा नहीं कर सकते थे। समझाओ जरूर, लेकिन गुस्सा नहीं करते। चौथी बात है अशरीरी। जब आत्मा परम धाम में है तो अशरीरी अर्थात बिना शरीर के है, तो बीच बीच में आपको जब थोड़ा समय मिले तो सब कुछ भूल कर मैं आत्मा ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप आत्मा प्रकाशमय देश में परम धाम में प्रकाश स्वरूप बाप के पास बैठी हूँ, यही मेरा घर है, बाबा ही हमारा संसार है, भगवान के पास बैठो। फिर वहां से नीचे देखो, ये शरीर मरा पड़ा है, थोड़ी देर टिक करके फिर संकल्प से नीचे आओ कि मैं आत्मा परम धाम से उतर कर इस शरीर में प्रवेश किया है। ये अभ्यास आप पढ़ाते जाओ। इस अभ्यास से क्या होगा? एक तो अभी बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने मुरली में बताया कि बहुत भयानक परिस्थिति आने वाली है, उसमें ये अभ्यास बहुत मदद देगा। इस अभ्यास से आपकी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर रहेगी, इसलिए बाबा का डायरेक्शन आपको मिलता जाएगा। दूसरी बात, इस अभ्यास से शरीर से न्यारे होने के कारण आपके द्वारा भक्त सातों को अनेकों को साक्षात्कार होगा, कईयों की आप रक्षा कर सकेंगे, बहुतों से आपकी रक्षा हो जाएगी। इसलिए ये अभ्यास बहुत जरूरी है और अंत में परम धाम में बैठे बैठे बाबा के पास बैठे 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 शरीर यहीं रह जाएगा, आप बाबा के पास वतन में बैठ जाएंगे। जैसे कई बाबा सन्यासियों का उदाहरण देता है, ऐसे आप हो जाएंगे। तो एक अशरीरी होने का अभ्यास, दूसरा है श्रीमत पर मनसा वाचा कर्मणा, तीनों श्रीमत प्रमाण चलाओ। आपको श्रीमत नहीं याद रहती, लेकिन श्रीमत प्रमाण चले उसकी विधि है कि जो भी संकल्प करो तुरंत चेक करो कि ये संकल्प क्या बाबा को पसंद है, भगवान को पसंद है। ऑटोमेटिक श्रीमत प्रमाण आ जाएंगे। जो बोल बोलो चेक करो, ये बोल बाबा को पसंद है। जो कर्म करो चेक करो, भगवान के पसंद है। कौन सा संकल्प बोल कर्म भगवान को पसंद है? भगवान को वही संकल्प पसंद है जिस संकल्प में बाबा की याद या शुभ भावना शुभ कामना सर्व के प्रति हो, विश्व कल्याण की कामना हो, वो संकल्प बाबा को पसंद है। बोल वो पसंद है जिस बोल से अन्य आत्माओं की चढ़ती कला हो, ऐसे बोल ना हो जो किसी की गिरती कला हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, नहीं, चढ़ती कला हो। कर्म ऐसे हो जो आपका हर कर्म चरित्र बन जाए, चरित्र अर्थात आपके करते हुए कर्म को देखकर दूसरे आपके कर्म को फॉलो करने की प्रेरणा ले, वो कर्म चरित्र कहलाता है। तो ये मनसा वाचा कर्मणा, तीनों श्रीमत प्रमाण चलाओ तो श्रेष्ठ रहेंगे, आपका श्रेष्ठता का खाता बढ़ता जाएगा और आप डबल लाइट रहेंगे। श्रीमत प्रमाण चलेंगे तो आपके कर्म का जिम्मेदार बाबा हो जाएगा, आप हल्के हो जाएंगे। तीसरी बात है एक आस एक बल एक भरोसा। जिस आत्मा ने ये रखा हुआ है एक आस एक बल एक भरोसा, इसका आपको थर्मामीटर है, ऐसे तो सब कहते हैं मेरा तो एक बाबा ही है, दूसरा कोई नहीं है, सब यही कहते हैं। लेकिन जब परिस्थिति आती है तब मेरा बाबा रहता है, आपकी चेकिंग है परिस्थिति के समय। परिस्थिति के समय तो डॉक्टर याद आता है, लौकिक परिवार वाले याद आते हैं, या कोई मदद करने वाला है वो याद आता है, थोड़ा बहुत बाबा भी याद आता है। ऐसे में बाबा की मदद नहीं मिलती। अज्ञान काल में भी कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। अज्ञान काल में भी कहते जिसका कोई नहीं उसका भगवान। तो आप सब के बीच में रहते हुए लेकिन मन से मेरा एक बाबा ही है और कोई नहीं है, एक आस, एक बल, एक के ही बल का भरोसा। बहुत चमत्कारिक कार्य होंगे। हम अपने गांव की बात बताता, एक माता थी, बहुत गरीब थी, लेकिन उसको कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आप ले जाओ, अभी 2-3 दिन की मेहमान है। उसको घर वाले ले आए, सीधा सेंटर पर ले गए हॉस्पिटल से, और सेंटर पर वहां जो थी बहन, उसने इतना बड़ा जो बाबा का फोटो होता है, बाप दादा का, वो फोटो उसको दिया। उसने फोटो अपने यहाँ हृदय में रख लिया कपड़े के अंदर। 7 दिन के अंदर कैंसर ही गायब हो गया, पता नहीं कहाँ कैंसर चला गया। तो ये जब एक पर विश्वास कर लो, जिसको डॉक्टर जवाब दे दिया बाबा ने ठीक कर दिया। ऐसे कई सबके साथ अनुभव होगा, कई उदाहरण है। लेकिन जब एक के विश्वास पर आ जाओ, कुछ ये कुछ वो नहीं, अगर एक है तो जहां जरूरत है वो अपने आप ही करा देगा। तीसरी लास्ट है चौथा, ड्रामा। ड्रामा पर अडिग रहो। ड्रामा सब करते हैं, लेकिन कौन ऐसा है जो ड्रामा पर 100% खड़ा रह सकता है, कुछ भी हो जाए लेकिन मन में संकल्प नहीं चले? हो सकता है, हो सकता है। सोचो, आप जा रहे थे अभी और आपका टिकट गायब हो जाए, क्या करोगे? संकल्प चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा संकल्प, लेकिन नहीं। अगर ड्रामा पर स्थित है, टिकट ढूंढना जरूरी है, लेकिन ये अंदर पक्का रहे कि जो कल पहले हुआ है होकर रहेगा, मिला होगा तो मिल ही जाएगा। कर्म करना ढूंढना जरूर है, लेकिन अंदर इतनी भी हलचल ना आए, क्योंकि ड्रामा तभी लग सकता है जब ड्रामा को तीन रूप से एक साथ देखो। ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है और ड्रामा एक्यूरेट है। न्यायकारी, कल्याणकारी और एक्यूरेट, अगर ये तीन रूप से ड्रामा को देखेंगे तो आपका ड्रामा लग जाएगा, जैसे कैसी भी परिस्थिति हो। पहली बात न्यायकारी है, ड्रामा कभी भी अन्याय नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है। जिस कर्म का जैसा फल है वो उसे अवश्य मिलता है। हमसे आपसे कोई छिपा ले, ड्रामा से नहीं छिपेगा। न्यायकारी ना छोटा देखता है ना बड़ा देखता है, कर्म का फल अटूट है, मिलता ही है, एक्यूरेट मिलता है। तो पहली बात, जब आपके साथ कुछ भी घट रहा है, अच्छा या बुरा, तो एक ड्रामा में पहले ये संकल्प लाओ कि ड्रामा न्यायकारी है। आपके अंदर हलचल क्यों आती है? किसी और के ऊपर दोष देते हो, उसके कारण ये हुआ है, उसके कारण ये हुआ है, तो मन में हलचल आती है। किसके कारण नहीं हुआ है, लेकिन हमारे कर्म का फल है। मान लो हमारा टिकट गायब हो गया था, हो सकता है हमने किसी जन्म में कहीं भी उसका पैसा, गवर्नमेंट का कहो किसी का कहो, पैसा हमने लिया हुआ था, वो हमें देना ही पड़ेगा, हमें दूसरा टिकट लेना ही पड़ेगा। न्यायकारी है, ड्रामा न्याय करता है। ये नहीं आप बीके बन गए तो पक्षपात कर देगा, आपका पक्ष ले लेगा, नहीं, न्यायकारी। दूसरी बात, ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा में जो कुछ भी होता है, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, लेकिन भीखे के लिए सब अच्छा है। उदाहरण के रूप से, अभी कोरोना काल आया, कोरोना में कई भीखे ने भी शरीर छोड़ा, कईयों ने शरीर छोड़ा। दुनिया वालों का तो अपना हिसाब किताब है, उनकी बात अलग। बाबा के बच्चों ने, कईयों ने शरीर छोड़ा। प्रश्न उठता था कि बाबा के बच्चे कोरोना से क्यों शरीर छोड़ गए? इसका कारण था, जिन बच्चों का कोरोना से शरीर छूटा है, बड़ी गहरी बात है, वो बाबा त्रिकालदर्शी है। आप हम सबके तीनों कालों को जानता है। जिस आत्मा के इस शरीर से अभी आगे सेवा लेने लायक शरीर तैयार हो सकता है, वो तो कोरोना से ठीक हो गए, क्योंकि आगे सेवा बाबा को लेनी है। और जिसका शरीर कोरोना के बाद ये इतनी सेवा नहीं कर सकता था, जैसा बाबा चाहता था तो उसको आगे का शरीर दे करके उससे और अच्छी सेवा ले रहा है, इसलिए उनका शरीर छूटा है। और कई तो कोरोना काल में कईयों को कोरोना तो वरदान बन गया। एक महाराष्ट्र की टीचर बहन थी, हमसे मिलने आई, पहले भी मिलती थी, तो उसको आंख बहुत कमजोर थी। धीरे धीरे उसने 2-3 ऑपरेशन भी कराया, लेकिन रोशनी कम होती गई। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि रोशनी बिल्कुल चली गई, मतलब अंधी हो गई, टीचर थी। और उसी बीच में उसे कोरोना हो गया। अब कोरोना हो गया तो उसको तो हॉस्पिटल ले ही जाएंगे, क्योंकि कोरोना को तो छोड़ नहीं सकते हैं। उसको हॉस्पिटल ले गए, और कोरोना में मेन चीज कोरोना की ही दवाई देते हैं, दूसरी बीमारी की तरफ उतना अटेंशन नहीं जाता है। इसीलिए जिसका दूसरा पार्ट कमजोर होता है, कोरोना की दवाई बड़ी स्ट्रांग होती है, वो पार्ट सहन नहीं कर पाता और शरीर छूट जाता है। इस बहन के साथ क्या हुआ कि कोरोना की दवाई दिया, अब पता नहीं उस दवाई में कौन सी दवाई कैसे काम किया कि उसकी आंख की रोशनी वापस आ गई, और इतनी वापस आई कि चश्मा तक हट गया, 100% ठीक हो गई। तो हर एक कल्याणकारी है, लेकिन अपने अपने कर्म साथ में चलते हैं। लेकिन जो बच्चा एक आस, एक बल, एक भरोसे पर चलता है, उसको बाबा की इतनी मदद मिल जाती है कि उसका हर एक बात में कल्याण ही कल्याण होता है। इसलिए ये चारों बातें पक्की रखो, अशरीरी होने का अभ्यास, श्रीमत पर चलना है, एक आस, एक बल, एक भरोसा, और ड्रामा न्यायकारी है, कल्याणकारी है और एक्यूरेट है। जिस समय जिस कर्म का जो फल मिलना है उसी समय वो अवश्य मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो इन तीन बातों के साथ एक साथ ड्रामा को लगा के देखो तो ड्रामा आपका लग जाएगा और आपकी डबल लाइट स्थिति बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। परिष्कार रूप रच कर।
परिष्टारू